ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान करने के लिए विश्वव्यापी सहमति और सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड का कथन। सहकारी बचतकर्ताओं की रकम वापस कराने और संसदीय जांच समिति गठन कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बृहद प्रदर्शन करने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। गर्म हवा लू से लोगों को बचाने की ओर ध्यान देने का तराई मधेश के जिला प्रशासन कार्यालय को गृह मंत्रालय ने किया निर्देश। और फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि यदि आप गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तो इसमें व्यक्तियों, समुदायों और राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाने और सद्भाव फैलाने में मदद मिलेगी। आज 2568वीं बुद्ध जयंती की पूर्व संध्या पर आज लुम्बिनी में आयोजित चित्रकला प्रदर्शनी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि बुद्ध की शाश्वत वाणी दुनिया में और अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि दुनिया के सभी लोगों के लिए शांति के केंद्र के रूप में लुम्बिनी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। ये कहते हुए कि सांस्कृतिक आयाम नेपाल भारत संबंधों के संदर्भ में एक विशेष स्थान रखता है, प्रधानमंत्री ने उल्लेख किया कि सांस्कृतिक आयाम ने प्राचीन काल से दोनों देशों के लोगों को करीब रखा है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय जलवायु परिवर्तन की सबसे खराब और असुरक्षित स्थिति में हैं। आज काठमांडू में हिमालयी जनता तथा जलवायु परिवर्तन विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विज्ञ संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि पर्वतीय जीवन शैली जलवायु प्रेरित आपदाओं और अन्य प्रभावों से प्रभावित हुई हैं। प्रधानमंत्री प्रचंड ने उल्लेख किया कि जलवायु परिवर्तन गरीबों, महिलाओं को प्रभावित कर रहा है, जो परिवर्तनों से निपटने के लिए जानकारी, संसाधनों और क्षमता की कमी के कारण मौसम आधारित आजीविका पर निर्भर है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि खोप 28 ने एकीकृत प्रक्रिया के लिए पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणाली को महत्वपूर्ण माना है और पर्वतीय मुद्दों को आगे बढ़ाने और पहाड़ और इसके लिए स्थायी समाधान खोजने के लिए वैश्विक सहमति और समर्थन की एक लंबी यात्रा करने की आवश्यकता है। संवाद में उप प्रधान एवं परराष्ट्र मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय पर अधिक असर पड़ा है, जिससे बर्फ पिघल रही है, इसलिए ऐसी समस्याओं को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास आवश्यक है। वन तथा वातावरण मंत्री नवल किशोर सासूड़ी ने कहा कि चूंकि हिमालयी देशों में जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाली प्रतिकूलताएं दुनिया के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है, इसलिए उन्हें इससे बचाना जरूरी है। संवाद में नेपाल सहित 25 देशों के विशेषज्ञों, पर्वतीय और छोटे द्वीप देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विकास भागीदार, अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज के प्रतिनिधि सहित 200 से अधिक सहभागी हैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय समिति और संसदीय दल की आज हुई संयुक्त बैठक में सहकारी मामले की जांच के लिए संसदीय समिति के गठन की मांग करते हुए बृहद प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। नेपाली कांग्रेस के सह महामंत्री बद्री पांडे ने बताया कि ताजा राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा के लिए पार्टी के केंद्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुर में हुई बैठक में काठमांडू जिला कार्य समिति के आयोजन में जेठ 13 गते रविवार काठमांडू के भ्रिकुटी मंडप में बृहद प्रदर्शन करने का निर्णय किया है। ये जानकारी कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ. प्रकाश शरण महत ने दी। सहकारी धोखाधड़ी मामले में मंत्री रवि लामिछाने के ऊपर जांच के लिए संसदीय समिति बनाने का दबाव बनाने पर भी चर्चा हुई। नेपाली कांग्रेस सहकारी रकम के दुरुपयोग में गृहमंत्री लामिछाने की संलिप्तता की जांच संसदीय समिति से कराने की मांग को लेकर लगातार संसद को बाधित कर रही है। कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य कुंदन काफले ने बताया कि बैठक में शामिल लोगों ने कहा कि गिरिबंधु भूमि घोटाला एवं भ्रष्टाचार के जो अन्य मुद्दे चर्चे में हैं, उन पर पार्टी अपनी स्पष्ट राय बनाए और संघर्ष की दिशा बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने कोशी प्रदेश के मुख्यमंत्री हिकमत कारकी के खिलाफ दायर रीट में मिसील दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश द्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना और बालकृष्ण ढकाल की संयुक्त पीठ ने अगली सुनवाई में मुख्यमंत्री कारकी द्वारा विश्वास मत लेते समय का मिसील फाइल पेश करने का आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एकल पीठ ने अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था और दोनों पक्षों को चर्चा के लिए बुलाया था। प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग ने साख 25 गति तक विश्वास मत न लेने की बात बताते हुए केदार कार्की की जगह माले के हिकमत कार्की को मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14# # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। जिला अदालत धनुषा ने कांतिपुर मीडिया ग्रुप के चेयरमैन कैलाश शिरोहिया को जांच के लिए 3 दिनों तक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया है। जिला पुलिस कार्यालय धनुषा के डीएसपी एवं प्रवक्ता रंजन अवा ने बताया कि न्यायाधीश चूड़ामन खड़का की एकल पीठ ने अध्यक्ष शिरोहिया को जांच के लिए 3 दिनों के लिए हिरासत में रखने का आदेश जारी किया है। इससे पहले पुलिस ने आज सुबह 11 बजे उन्हें जिला अदालत में पेश किया और 5 दिन की मोहलत मांगी थी। रौतहड़ में बंद पड़ी श्रीराम चीनी मिल के संचालक को लेकर आ रही समस्याओं के समाधान के लिए आज महिला एवं सामाजिक मामला समिति की सभापति किरण शाह के नेतृत्व में एक कार्यदल का गठन किया गया है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री दामोदर भंडारी के कार्यालय में हुई त्रिपक्षीय चर्चा के बाद 5 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया गया। चीनी मिल की ओर से हितेश गोलछा और विशाल अग्रवाल, किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष और मंत्रालय के औद्योगिक संवर्धन प्रभाग के प्रमुख अशोक कुमार यादव कार्यकारी समूह में हैं। कामी रीता शेरपा ने 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। एवरेस्ट बेस कैंप में पर्यटन विभाग के अस्थायी कार्यालय के प्रमुख हीमलाल गौतम के अनुसार वो आज सुबह 7:49 में शिखर पर पहुंची थी। रेडियो नेपाल द्वारा आयोजित समावेशी प्रसार सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण प्रविधि तालीम एवं व्यापार प्रवर्धन अंतरक्रिया कार्यक्रम दांग में शुरू हुआ है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए लुम्बिनी प्रदेश सभा के सभामुख तुलाराम घरती मगर ने कहा कि रेडियो नेपाल को देश के कोने कोने तक पहुंचाने की जरूरत है। इसी तरह संचार तथा सूचना प्रविधि सचिव रामकृष्ण सुवेदी ने कहा कि 16वीं योजना में रेडियो नेपाल के पहुंच को सभी लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यक्रम में रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक बुद्धि बहादुर केसी ने रेडियो नेपाल की मौजूदा स्थिति के विषय में जानकारी कराई थी। कार्यक्रम में मगरखाम, अवधि और पश्चिमा थारू भाषाओं में कार्यपत्र प्रस्तुत किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने गर्म हवा लू से लोगों को बचाने की आवश्यक तैयारी में जुटने का तराई मधेस के जिला प्रशासन तथा अन्य संबंध निकायों को परिपत्र किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ने घोषणा की है कि वो औपचारिक रूप से अगले सप्ताह से फलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोर ने इसकी तारीख की भी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि उनका देश फलिस्तीन को राष्ट्र के तौर पर 28 मई को मान्यता देगा। वहीं स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा है कि इसराइल दो राष्ट्र समाधान को जोखिम में डाल रहा है। उन्होंने फलिस्तीन पर इसराइल की नीति को दर्द और तबाही की नीति कहा है। इसराइल ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इसराइली सरकार के प्रवक्ता ने बीबीसी से कहा है कि मान्यता दिए जाने से न तो फलिस्तीनी लोगों को मदद मिलेगी और न ही इसराइलियों को। इसराइल के विदेश मंत्री कार्टिज ने कहा है कि हमास के हथियारों को स्वर्ण पदक देने जैसा है। वहीं हमास और फलिस्तीनी अथॉरिटी ने इस फैसले का स्वागत किया है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों का समाधान करने के लिए विश्वव्यापी सहमति और सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। सहकारी बचतकर्ताओं की रकम वापस कराने और संसदीय जांच समिति गठन कर दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग करते हुए बृहद प्रदर्शन करने का नेपाली कांग्रेस का निर्णय। गर्म हवा लू से लोगों को बचाने की ओर ध्यान देने का तराई मधेश के जिला प्रशासन कार्यालय को गृह मंत्रालय ने किया निर्देश। और फलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का नर्वे स्पेन और आयरलैंड ने की घोषणा। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे की हिंदी समाचार समाप्त हुई। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।